नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और चीन सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश अक्टूबर के अंत तक निर्दिष्ट स्थानों पर सीधी हवाई सेवाएं आरंभ करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन प्राधिकरणों का यह समझौता भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क और सुगम बनाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन रायडू ने कल एयरबेस के निदेशक मंडल और इंडिगो के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में भारत के नागर विमानन क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण और भारत यूरोप आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोप के बढ़ते संबंधों का हवाला देते हुए भारत के नागर विमानन क्षेत्र के विस्तार से उत्पन्न अवसरों का उल्लेख किया। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत में विमानन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विनिर्माण साझेदारी और स्थिरता लक्ष्यों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। वस्त्र मंत्रालय ने आगामी खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन की तैयारियों को बढ़ा दिया है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव ने खरीफ कपास सीजन 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारियों के व्यापक समीक्षा की। मंत्रालय ने बताया कि रिकॉर्ड 550 कपास खरीदारी केंद्र 11 राज्यों में कार्यरत हैं। ये केंद्र कपास के अधिक आमद के दौरान उन्नत लॉजिस्टिकल दक्षता और किसानों की अधिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। राज्यों को कपास किसान एप्लीकेशन के जरिए भागीदारी और किसानों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। ये ऐप डिजिटल पंजीकरण और उचित समय पर भुगतान करने को लेकर किसानों को समर्थ बनाता है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने किसानों की चिंताओं का तीव्र निराकरण के लिए समर्पित व्हाट्सएप हेल्पलाइन भी शुरू की है। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के जामली गांव में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के एक पुल से नदी में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय ट्रॉली में कुल 14 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालु दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर वापस लौट रहे थे। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात तक बचाव और राहत कार्य जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। भारत ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हिटॉन पार्क सिनेगॉग पर योम किपुर के प्रेयर मीट के दौरान कल हुए आतंकी हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में इस दुख की घड़ी में ब्रिटेन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। मंत्रालय ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह बर्बर हमला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर हुआ। मंत्रालय ने कहा कि यह हमला आतंकवाद की बुरी ताकतों से विश्व को मिल रही चुनौतियों की एक डरावनी चेतावनी है। इन खतरों से वैश्विक समुदाय को एकजुटता और सम्मिलित कार्रवाई के जरिए निपटना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सहानुभूति और प्रार्थना मैनचेस्टर शहर के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 23 महिला माओवादियों सहित 103 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिक का कल मुंबई में निधन हो गया। वे 100 वर्ष के थे। श्री पारिक को अपने जीवन काल में 2 बार जेल जाना पड़ा था। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत छात्र कार्यकर्ताओं के रूप में की थी। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की है कि यात्रा नए साल से पहले होगी। प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। वर्ष 2022 के आरंभ में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद श्री पुतिन पहली बार भारत आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।